दीवा को आर्यान से मिले पूरा एक हफ्ता बीत गया था। इस बीच दोनों की कोई बात नहीं हुई। दीवा को लग रहा था जैसे आर्यांश ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, तो वहीं जेल में नवीन गोयनका की हालत बेहाल होती जा रही थी। रक्षित ने दीवा को नवीन से मिलने नहीं दिया और अब तो आर्यांश भी दीवा की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। इस बीच दीवा ने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। उसकी दिनचर्या अब हॉस्पिटल में सिमट कर रह गई थी। आज वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद घर जाने के बजाय दीवा तैयार होकर क्लब पहुंची, क्योंकि आज उनके डिपार्टमेंट के हेड यथार्थ मल्होत्रा का जन्मदिन था। बाकी लोग क्लब में कब के ही पहुंच चुके थे, जबकि दीवा सबसे देरी से आई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अपने शरीर में कमकपी सी महसूस हुई। काश मैं इस जगह पर उस दिन नहीं आती तो मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। ना मैं आर्यान से मिलती और ना ही मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, दीवा ने अंदर की तरफ झांकते हुए कहा। ये वही जगह थी जब पिछली बार दीवा रक्षित के साथ आई थी। रक्षित ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे और उसके बाद वो आर्यांश के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो गई थी। अगर आज उसके डिपार्टमेंट हेड यथार्थ मल्होत्रा का बर्थडे नहीं होता तो वो कभी नहीं आती। वैसे भी यथार्थ उसे पसंद नहीं करता था। अगर वो पार्टी में नहीं आती तो फिर से उसे यथार्थ के ताने सुनने को मिलते। दीवा ने गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत किया और वो अंदर गई। उसके बाकी के टीम मेंबर्स भी वहीं पर थे। दीवा को उनकी तरफ बढ़ते हुए देखकर यथार्थ उसके पास गया और सिर हिलाकर कड़वाहट से कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम आज पार्टी में आओगी। वैसे लेट आकर क्या तुम खुद की इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहती हो? सॉरी, वो मुझे अचानक ही एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जाना पड़ा, वरना मैं टाइम से आती। आप तो जानते हैं कि हम डॉक्टर्स कभी भी टाइम को लेकर कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं, दीवा ने खुद की सफाई में कहा। यथार्थ ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, लेकिन रूल तो टूटा है। तुम अच्छे से जानती हो कि जो डिपार्टमेंट की दी हुई पार्टी में लेट आता है उसे सजा के तौर पर 5 ड्रिंक के शॉट्स लेने पड़ते हैं, यथार्थ की बात पर सहमति जताते हुए दूसरे डॉक्टर ने कहा। तो डॉक्टर गोयनका, क्या तुम तैयार हो? वैसे मैंने पहले ही तुम्हारी सजा के तौर पर शॉट्स तैयार करके रखे थे। दीवा ड्रिंक नहीं करना चाहती थी, उसने मना करना चाहा, पर यथार्थ में जबरदस्ती उसकी तरफ शॉट्स बढ़ा दिए थे। दीवा ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर एक एक करके उसने 5 शॉट्स खाली कर दिए थे। दीवा के ड्रिंक करते ही यथार्थ ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज हमारी डॉक्टर गोयनका फुल पार्टी मूड में है, क्यों ना हम भी इन्हें ज्वाइन करते हुए एंजॉय करते हैं। सबने यथार्थ की बात पर हामी भरी। दीवा ने भी अनजाने में काफी ड्रिंक कर ली थी, अब उसके कदम लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। दीवा जब बाथरूम की तरफ जा रही थी तो किसी की नजरें उस पर टिकी हुई थीं और वो सर्द निगाहों से उसकी तरफ घूर रहा था। वो कोई और नहीं, आर्यांश था, जो इस वक्त एक क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था। आर्यांश के चेहरे के भाव काफी सर्द थे। उसने सिर हिलाकर मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, ये लड़की सच में बेवकूफ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे अकल नहीं आई जो ये इस तरह टल्ली होकर उसी क्लब में घूम रही है। इसे सच में इस बात की भी परवाह नहीं है कि कोई इसका फायदा उठा लेगा। इडियट, आर्यांश मन ही मन दीवा पर गुस्सा उतार रहा था। उसकी नजरें अभी भी दीवा पर थीं। उसके क्लाइंट ने नोटिस किया कि आर्यांश का ध्यान उसकी बातों में नहीं है। उसने आर्यांश की नजरों को फॉलो किया तो वो दीवा को देख रहा था। अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके क्लाइंट ने टेबल पर ग्लास को आवाज करते हुए रखा, जिससे आर्यांश का ध्यान टूट गया। आर्यांश ने उसकी तरफ देखा तो उसके क्लाइंट ने कहा, लगता है आपका मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं है मिस्टर कपूर। बोलते हुए उसने दीवा की तरफ इशारा किया, जो बिल्कुल धीरे चल रही थी। वहीं दीवा के कदमों ने उसका साथ नहीं दिया। वो किसी के ऊपर गिरती उससे पहले वो पास ही एक खाली चेयर पर बैठ गई। दीवा ने अपना सिर पकड़कर लड़खड़ाती आवाज में कहा, लगता है सब कुछ घूम रहा है। मुझे इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। वो लोग तो पीछे रह गए, अब मैं किसकी हेल्प लूं? दीवा वहां कश्मकश में बैठे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। इस बीच आर्यांश अपने क्लाइंट से बात करने लगा। उसके क्लाइंट ने आर्यांश को सिगरेट जलाकर देते हुए कहा, शायद इसके बाद आपका ध्यान हमारी बातों में लग जाए। मिस्टर कपूर, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और अगर आप हमारे साथ जुड़े तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी कंपनी जो नुकसान झेल रही है उससे हम जल्द ही उभर जाएंगे। आप चाहो तो प्रॉफिट शेयर ज्यादा ले सकते हैं, पर प्रोजेक्ट को बीच में मत छोड़िएगा। आर्यांश का ध्यान अभी भी उसकी बातों में नहीं था। वो सिगरेट के कश लेते हुए दीवा को घूर रहा था। फिर क्लाइंट के ज्यादा जोर देने पर आर्यांश ने दीवा से अपना ध्यान हटाया और उसकी दी हुई फाइल को पढ़ने लगा। वहीं दीवा जब अकेले बैठी हुई थी तभी उसके पास एक लड़का आया। उसने दीवा की कलाई को पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या बात है डार्लिंग, लगता है तुम बिल्कुल भी होश में नहीं हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। दीवा ने अपना हाथ छटक कर उसे दूर कर लिया। वो नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। कम ऑन, तुम अकेली हो और खुद को संभाल नहीं पा रही हो। रुको, मैं अपने फ्रेंड को बुला लेता हूँ। उधर दूसरी तरफ हमारे बाकी दोस्त भी बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे और ट्रस्ट मी, आज रात तुम बहुत एंजॉय करने वाली हो, उस लड़के ने कहा और दीवा को कमर से पकड़कर चेयर से उठाया। वो लड़का बाथरूम से आया था। उसका फ्रेंड भी उसके पीछे उस तरफ आया तो उसने इशारे से उसे दीवा के पास आने को कहा। वो दोनों अब दीवा के करीब आ गए थे। उस क्लब में इस तरह एक लड़की का पार्टी करते हुए दो लड़कों या अपने दोस्तों के साथ घूमना आम था, इसलिए किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। सब अपने में बिजी थे। दीवा ने मदद के लिए इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसकी टीम भी उससे काफी दूर थी। दीवा ने अपना हाथ उससे दूर करने की कोशिश की और कमजोर सी धीमी आवाज में कहा, तुम लोग पूरे आदमी हो, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, छोड़ो मुझे, जाने दो वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी। अच्छा तो तुम हमारी कंप्लेंट करोगी, लेकिन तुम हमारी कंप्लेंट क्यों करोगी, हम बुरे आदमी नहीं हैं, तुम एक बार हमारे साथ आकर तो देखो, फिर पता चल जाएगा हम कितने अच्छे इंसान हैं, वो लड़का आईविंग करके बोला, जिस पर उसका दोस्त हंसने लगा। उसके बाद उसने अपने दोस्त को इशारे से दीवा को वहां से ले जाने को कहा। दीवा को वहां से हटाने से पहले उन्होंने इधर उधर देखा तो सब अपने में ही लगे हुए थे। दूसरे लड़के ने दीवा की कलाई को कसकर पकड़ लिया था। वो सख्त आवाज में बोला, चुपचाप साथ चलो वरना उठाकर लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर दीवा को गुस्सा आ गया। अपना हाथ उसे दूर करने के लिए दीवा ने उसके हाथ पर काट लिया था, जिस पर वो लड़का और भी गुस्सा हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? तुम जैसी लड़कियां यहाँ क्लब में आकर ऐसे ही टल्ली होकर घूमती हो और फिर हम जैसे लड़कों को गुंडा बोलकर संस्कारी बन जाती हो, तुम्हें तो अभी सबक सिखाता हूँ, वो लड़का गुस्से में बोला। उसने अपना हाथ उठाया और वो दीवा को थक्कर मारने ही वाला था कि किसी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था। वो लड़का अपना हाथ उसके हाथ से अलग करना चाहता था, लेकिन उसने उसके हाथ को बुरी तरह मरोड़ दिया था। वो कोई और नहीं, आर्यांश था, जो इस वक्त बेहद सर्द निगाहों से उस लड़के को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यांश अभी उसकी जान ले लेगा।
आर्यांश का गुस्सा ही उसे नहीं डरा रहा था, बल्कि उसकी पूरी शख्सियत उसके दिल में डर पैदा कर रही थी। उसके सामने खड़ा आदमी कौन था वो अच्छे से जानता था, आर्यांश कपूर, जो कपूर इंटरनेशनल्स का मालिक था और कुछ सेकंड में सामने वाले को बर्बाद करने की औकात रखता था। उसे इस तरह अपने सामने देखकर वो लड़का कांपने लगा। वो मैं सिर्फ मेरी बात, वो लड़का डरते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा था, तभी आर्यांश ने उसका हाथ एक झटके में छोड़ दिया। आर्यांश ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, निकलो यहां से, और आज के बाद इस लड़की के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए। आर्यांश की बात सुनकर उस लड़की की जान में जान आ गई थी। उसने उसे काफी सस्ते में छोड़ दिया था, वरना उसकी जो हरकत थी उसके बाद आर्यांश इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देता था। उसने जल्दी से अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और वहां से भाग गया। उनके जाते ही आर्यांश दीवा की तरफ पलटा। अपने सामने इस तरह आर्यांश को देखकर दीवा की आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। वो कुछ कहती उससे पहले आर्यांश ने उसे पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया था। आर्यांश के चेहरे पर गुस्से के भाव थे, जिसे देखकर दीवा को डर लगने लगा। न जाने अब वो उसके साथ क्या करने वाला था। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी का कॉन्टेंट अगले चैप्टर में। सॉरी थोड़ा बिजी होने की वजह से बीच में गैप लेना पड़ा। अब रोजाना फिर से दो चैप्टर देने की कोशिश करूंगी। आज भी दो चैप्टर आएंगे, तो प्लीज आप पढ़कर हर एक पार्ट पर रेटिंग और कमेंट कर दीजिएगा। क्या लगता है, आर्यांश दीवा को सस्ते में जाने देगा या उस पर गुस्सा करेगा?